हवेली की शामें हमेशा सन्नाटे में ढली रहती थी। बाहर आंगन में दियों की हल्की लौ जल रही थी, हवा में रसोई से मसालों की खुशबू तैर रही थी, पर हवेली के भीतर वही शांत भारी माहौल। विश्वनाथ की गाड़ी आकर रुकी, गेट खुला, वो उतरकर अंदर आया। सफ़ेद शर्ट की कॉलर ज़रा सी खुली थी, चेहरे पर वही सख्त अडिग भाव। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। दरवाज़ा खुला, कमरे में हल्की रोशनी थी। शामली खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर देख रही थी, किसी अनजाने डर और उम्मीद के बीच। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, पर आँखों में वही झिझक जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। विश्वनाथ अंदर आया, कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया, घड़ी कलाई से निकाली टेबल पर रख दी और बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम की ओर चला गया। शामली वहीं खड़ी रही, कुछ देर तक बस वही आवाज़, शावर की बूंदें और कमरे का सन्नाटा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, सोफे पर पड़े कोट को उठाने लगी, आदत थी उसके बाद कमरे को संवारने की। पर तभी कोट के अंदर कुछ गिरा, एक छोटा मखमली बॉक्स, वो ठिठक गई। शामली ने झुककर उठाया, धीरे से हथेलियों में पलटा, छोटा सादा मगर कीमती दिखने वाला बॉक्स। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर डरते डरते खोला। अंदर एक पतला सा सिल्वर ब्रेसलेट था, साफ चमकीला और बेहद सुंदर। रोशनी उसकी सतह पर चमक रही थी, जैसे किसी चुप प्रेम का छोटा सा इजहार हो। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके होंठों से एक धीमी सांस निकली, आधे हैरानी में आधे डर में। ये, उसने खुद से फुसफुसाया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, विश्वनाथ बाहर आया, बाल थोड़े गीले, कमीज़ की बाहें मुड़ी हुई और चेहरा वही गंभीर। उसने देखा शामली के हाथ में वो बॉक्स है। एक पल को दोनों की नज़रें मिली, फिर शामली ने जल्दी से कहा, ये आपकी जेब में था, शायद गिर गया। उसने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। विश्वनाथ कुछ सेकेंड तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी, लगभग झिझकती हुई आवाज़ में बोला, वो तुम्हारे लिए था। शामली की उंगलियाँ रुक गईं, वो पल में जैसे पत्थर हो गईं। मेरे लिए? उसकी आवाज़ कांपी। विश्वनाथ ने हल्की निगाह झुकाई, हाँ रख लो। उसके लहजे में कोमलता नहीं थी, पर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत सख्त आदमी अपने ही शब्दों से असहज हो। शामली ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका स्वर धीमा मगर साफ था। वो बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा ही रही थी कि विश्वनाथ का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। रख लो, उसने कहा, आवाज़ अब सख्त थी। नहीं विश्वनाथ जी, सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो पीछे हट गई, पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विश्वनाथ एक कदम आगे बढ़ाया। कमरे में उसकी भारी मौजूदगी फैल गई, हवा तक थम गई। वो उसके बिल्कुल सामने रुक गया, इतना पास कि शामली की सांस उसके सीने से टकरा रही थी। मैंने जब कहा है कि तुम्हारे लिए है, उसने धीमी मगर खुरदरी आवाज़ में कहा, तो इसका मतलब है तुम पहनोगी। शामली पीछे हटने की कोशिश करती है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांपती है। विश्वनाथ की आँखें सिकुड़ गईं, ज़बरदस्ती नहीं, बस मेरी बात मान रही हो। वो और करीब आता है, अब उनके बीच सिर्फ एक सांस का फासला था। वो बॉक्स उसके हाथ से लेता है, ब्रेसलेट निकालता है और बिना कुछ बोले उसकी कलाई की तरफ बढ़ता है। शामली पीछे हटती है, नहीं मत कीजिए, चुप रहो। उसकी आवाज़ एकदम धीमी मगर गहरी थी, एक ऐसी आवाज़ जो विरोध को वहीं रोक दे। उसके हाथ ठंडे थे पर स्पर्श गर्म। वो उसकी कलाई पकड़ता है और ब्रेसलेट धीरे से पहना देता है। स्पर्श इतना धीमा, इतना सटीक कि डर और धड़कन दोनों एक साथ महसूस हुए। शामली की सांसें भारी हो गईं, वो नीचे देख रही थी पर महसूस कर रही थी उसके हर स्पर्श में ना गुस्सा था ना दया, बस एक अनकही जिद थी। ब्रेसलेट पहनाने के बाद वो कुछ देर तक उसकी कलाई को देखता रहा, फिर बहुत हल्की आवाज़ में बोला, अब ठीक है। शामली ने नज़रें उठाई, उसकी आँखों में डर और उलझन दोनों थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। विश्वनाथ ने पलटकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिए हुए से मुंह मोड़ो। पर मैंने तो, मैंने कहा, इसे पहनना ही होगा। वो रुक गया, फिर बहुत धीरे से बोला, वरना मुझे बुरा आदमी बनने में देर नहीं लगेगी। शामली की पलकें झुक गईं, चेहरे पर डर की हल्की परत थी, पर आँखों के कोनों में कहीं एक नमी थी, जैसे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा हो। कमरा पूरी तरह खामोश था, लैंप की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी, उसकी कलाई पर चमकता सिल्वर और विश्वनाथ की आंखों में उतरा साया। वो पीछे हटा, धीरे से बोला, अब आराम करो, बहुत देर हो चुकी है, और मुड़कर खिड़की की ओर चला गया। शामली वहीं खड़ी रही, हाथ अब भी वहीं जहां उसने छुआ था। उसकी उंगलियां ब्रेसलेट को हल्के से छू रही थीं, जैसे पूछ रही हों, क्या ये डर है या कुछ और। विश्वनाथ खिड़की के सामने खड़ा था, बाहर रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में हल्के बादल और हवेली की बत्तियां मंद पड़ चुकी थीं। उसकी परछाई शीशे में दिख रही थी, लंबी भारी मगर थकी हुई। शामली धीरे से पलकी, वो कुछ कहना चाहती थी, शायद धन्यवाद, शायद क्यों, पर शब्द गले में फंस गए। उसने बस एक नज़र उसकी पीठ पर डाली, वो पीठ जो कभी उसके लिए दीवार जैसी लगती थी, अब कुछ पल को सहारा सी लगी। वो धीरे से फुसफुसाई, मैंने नहीं मांगा था कुछ। विश्वनाथ ने शीशे में उसकी परछाई देखी, पर पलटा नहीं, बस बहुत हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, मैं भी नहीं चाहता था, मगर दे दिया। वो शब्द, वो लहजा, वो खामोशी, तीनों ने मिलकर कमरे को भर दिया। श्यामली ने धीरे से बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। लैंप की रोशनी अब और मुलायम हो गई थी। उसकी कलाई पर वो ब्रेसलेट हल्के से झिलमिलाया, जैसे किसी अधूरी बात की गूंज हो। विश्वनाथ ने खिड़की से बाहर देखा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, मगर हवेली के उस एक कमरे में अब पहली बार कुछ बदलने लगा था।